مطلب وہیں چل رہی تھی 1290 کی. دوسرا پیج نمبر ہے 64 پیج 9 نمبر کا رجسٹر. بات چل رہی تھی وہ ہٹ یوگی ہیں. ہاں باقی ان میں پوترتا کی طاقت ہے جس سے بھارت کو سماجتے ہیں, نہیں تو بھارت کو پتا نہیں کیا ہو جاتا. مکان کو پوچھی آگے لگائی جاتی ہے تو سوبا ہوتی ہے. بھارت مہان پوتر تھا, اب وہی پتی بنا ہے. وہاں تمہارا خوشی بھی بہت سمے چلتا ہے, تمہارے پاس بہت دھن رہتا ہے. تم بھارت میں ہی رہتے تھے, تمہارا راجیہ تھا. کل کی بات ہے, پھر بعد میں اور دھن آئے ہیں, انہوں نے آ کر کے کچھ سدھار کر کے اپنا نام بالا کیا, کوئی نئی دنیا نہیں بنا دی. پھر کہ مرمت کر کے چلے گئے, لیکن مکان کی مرمت کتنے دن چلے گی؟ مرمت ہونے کے بعد بھی پھر مکان تو پرانا ہی ہوتا جاتا ہے. ریپیئرنگ تو وہ تھوڑے سمے کے لیے ریپیئرنگ کام دیتی ہے, سکھ بھاگتا ہے اور پھر دنیا نیچے گرتی چلی جاتی ہے اور ہی دوسری دنیا ہو جاتی ہے. تو یہ سب باتیں نئے کو نہیں سنانی ہے. کیوں؟ کیونکہ نئے کو تو ہم دھرم گروؤں کے اوپر ہی سردا بیٹھی ہوئی ہے. اتنا ہی بدھ گائے کہ گرو نانک آدی کے اوپر ہی سردا بیٹھی ہوئی ہے. جس کو سردا بیٹھی ہوئی ہے وہ نئے ہوئے پرانے ہوئے اے؟ وہ تو نئے ہوئے نا, جنہوں کو ان کے اوپر ہی سردا بیٹھی ہوئی ہے گرو کے اوپر. تو وہ جان مارگ میں نئے ہوئے یا پرانے ہوئے؟ نئے ہوئے نا, پرانے تو نہیں ہوئے. پرانے تو ان کو کہا جائے جنہوں نے باپ کو پہچانا اور باپ کے اوپر شردھا وشواس اور نشچے پکا کیا ہو. تو اب تو وہ بھی سمو پردھان بن گئے. کون وہ دھرم گرو دھرم پتا ہیں, سما پردھان بن گئے ہیں. اب تم بچوں کو کتنی خوشی ہونی چاہیے؟ یہ سب باتیں دھارن کرنے کی ہیں. پہلے پہلے تو باپ کی پہچان دینی, نئےوں کو کیا کرنا ہے؟ پہلے پہلے باپ کا پریچے دو, کیونکہ اگر ان کے سامنے گرو کی ایسی باتیں پول پٹی کھولنے لگے گی تو ان کو برا لگے گا. ان کی سدا ادھر پکی بیٹھی ہوئی ہے تو بھکتی کے سنسکار ایک دم خلاص نہیں ہوتے. تو پہلے پہلے تو ان کو باپ کی پہچان دو, باپ کی مہما کرو. باپ کا نام روپ دیش ساری جانتے ہو, کیا کیا جاننا ہے؟ ان کا نام کیا ہے, روپ کیا ہے, ان کا دیش کیا ہے, ان کا کاری کال کیا ہے. کال کے مطلب ان کا کاری کال کیا ہے, جیسے ابراہیم کا کاری کال اپنا, بدھ کا, کرائسٹ کا, گرو نانک کا اپنا اپنا, اپنے اپنے یوگ میں آ کر کے کاری کرتے ہیں. تو ان سے پوچھو کہ باپ کا نام روپ دیش کال جانتے ہو؟ کن سے؟ ان دھرم گروؤں سے یا ان کے فالوور سے پوچھو تو کیا بتائیں گے؟ نام روپ دیش کال کیا بتائیں گے؟ پہلے تو کہہ دیں گے نام روپ سے. نام روپ سے نہیں آ رہا ہے مانے تو نام روپ اس کو پہلے آنکھوں سے دیکھنے میں نہیں آتا. اور برہمن کی سنگم کی دنیا میں جو دو ڈھائی دھرم گرو ہے وہ کیا کہہ دیں گے؟ وہ اوکت ہندو ہے, ان آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے. وہ تو صرف بندو ہے, یہ نام ہے روپ ہے. نام ہے اس کا سر سب بھی کہہ دیں گے, کبھی شیو بابا بھی کہہ دیں گے, کیونکہ انہیں بابا میں اور شیو باپ میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا. پھر دیش پوچھیں گے تو کہہ دیں گے پرم دھام. شانت رہنے والا ہے, سورج چاند ستاروں کی دنیا سے پار رہنے والا ہے, پرم دھام کا واسی. اور کل اس کا کاری کاری کیا ہے؟ وہ سنگم یوگ. سنگم یوگ مانا باپ کا نام روپ دیش کال کیا ہے؟ पुरुषोत्तम संगम युग या सिर्फ संगम युग, संगम युग में और पुरुषोत्तम संगम युग में क्या करते बाबा को पुरुषोत्तम संगम युग कहना चाहिए। पुरुषोत्तम शब्द जरूर लगाना है, सिर्फ संगम युग नहीं कहना चाहिए। क्यों हाँ, इसमें पुरुष माने आत्मा, आत्मा में जो उत्तम आत्मा है वो प्रत्यक्ष होती है। क्या जितने भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उन आत्माओं में जो सबसे पावरफुल आत्मा है वो प्रत्यक्ष होती है, तो उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। फिर उसके बाद नंबरदार जो उत्तम उत्तम आत्माएं हैं माला की वो भी प्रत्यक्ष होती है। तो ये प्रत्यक्षता कब से शुरू होती है? इससे पहले नहीं। क्यों? ब्रह्मा सरस्वती उत्तम प्रत्यक्ष हुए ना? क्यों? ब्रह्मा सरस्वती से ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादा उत्तम कौन है? कैसे हो सकता है? बाबा कुबानी में कहते हैं कि ब्रह्मा मेरा फर्स्ट क्लास बच्चा है। तो मैंने कैसे कह दिया है? 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 अच्छा, ब्रह्मा सबसे फर्स्ट क्लास बच्चा तो है, कृष्ण बच्चा सबसे उत्तम है, लेकिन कृष्ण बच्चे को भी जन्म देने वाला कोई बाप है जो उससे भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये बात क्लियर नहीं होती कि संसक्ति से ही पुरुषोत्तम संगम युग है। कुछ गलत फहमी है, संगम युग है, लेकिन पुरुषों में उत्तम से उत्तम कौन है ये डिक्लेयर नहीं हुआ। तो देश और काल, उनका देश कौन सा है? क्योंकि जब देश काल की बात आएगी तो परम धाम नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि काल लगा हुआ है, इससे साबित होता है कि सारी काल तो इसे सृष्टि पर होता है, परम धाम में तो कोई काल होता ही नहीं, बात तो टाइम ही नहीं। तो कहां की बात है? इस साकार सृष्टि की बात है। इस साकार सृष्टि पर उसका देश कौन सा है? कौन से देश में आते हैं? भारत देश में तो आते हैं, फिर भारत देश में भी कौन सा देश? मगध देश। तो मगध देश को क्या कह देते हैं? वो तो सिंध हैदराबाद में क्या? वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, संबल तीर्थ। संबल तीर्थ का मतलब आधार, जो दुनिया का आधार रूप स्थान है। आधार माने सबसे पुराना, सबसे पुरानी चीज क्या होती है? आधार ही सबसे पुराना होता है। तो जरूर कोई ऐसा प्राचीन से प्राचीन गांव है या परमात्मा बापू आते हैं। क्योंकि मुरली ने भी पहले भी बोला हुआ क्या कि मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूँ जहाँ के लोगों को पेट भर खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ऐसे गरीब क्यों बने? कुछ ऐसे कर्म ऐसे किए हुए, लेकिन कुछ उनकी ऐसी श्रेष्ठता भी विशेष है जो भगवान बाप को उसी गांव में आना पड़ता है। तो बोला कि बाप का नाम रूप देश का ही जानते हो? उनसे पूछो तो जरूर रूप भी कोई बिंदु का रूप नहीं हुआ, क्योंकि बिंदु का कार्यकाल कैसे आंका जाएगा? बिंदु का कार्यकाल तो तब आंका जाए जब उस साकार में प्रत्यक्ष हो और कुछ करके जाए। कोई आए साकार रूप धारण भी करे और कुछ करके न जाए तो फिर उसको हैविली गार्ड फादर कहा जाएगा? हैविली गार्ड फादर मानी हैविन की स्थापना करने वाला। और अगर हम पिता है तो सिर्फ पलस्तर करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, स्वर्ग नहीं बनाते। और बाप तो स्वर्ग बना के जाते हैं और धर्म पिता अपने धर्म की स्थापना मात्र करते हैं, दूसरे धर्मों का विनाश करने की उनमें ताकत
नहीं है। ये काम सिर्फ बात नहीं कर सकते, इनके खंडन करना, दूसरों का खंडन करना, इसमें फिर मुकाबला करना पड़ता है, सामने करना पड़ता है। तो जो बात वाले परवर्ती धर्म दिखाए हैं वो पावरफुल होंगे या कमजोर होंगे, बाद में आने वाले जो धर्म पिता हैं वो पावरफुल होंगे या कमजोर होंगे, बाद में आने वाले
कमजोर होंगे।
अरे सृष्टि के आज में जो आएगा वो बड़ा बच्चा ठहरा, और जो बाद में आएगा छोटा बच्चा हुआ, कमजोर हुआ। तो जो छोटा बच्चा है, कमजोर है, छोटा भाई है, वो बड़े भाई इस परिवार को बढ़ा कैसे करेगा, उसका मुकाबला कैसे करेगा, उसमें इतनी ताकत कहां से आई? ये परमात्मा बाप का काम है कि जिस संघ में आ करके आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, तो स्थापना के साथ साथ बिना जल भी प्रज्वलित करता है। यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ उस बाप के द्वारा यज्ञ कुंड से बिना जल भी प्रज्वलित हुई, ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। पहले छोटा रूप, इनके ज्ञान का बीज रूप क्या था? छोटा रूप था, ब्रह्मा के साथ साथ तारों का क्लैरिफिकेशन मात्र था कि तुम कृष्ण की आत्मा हो, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें कार्य करना है, नई शक्ति जल की दुनिया आने वाली है, उसकी स्थापना तुमको ब्रह्मा के रूप में सफेद कोषधारी के रूप में करनी है, ब्राह्मण धर्म की जो बीज रूप ज्ञान था। बाकी तो कोई पुरानी गीता पढ़ करके सुनाई जाती थी सिंध हैदराबाद में, ज्ञान तो उस समय विस्तार में नहीं था। तो जब ज्ञान परिपक्व स्टेज में पहुंच जाए, गीता पूरी हो जाए, तब स्थापना का अधिकारी पूरा हो, क्योंकि गीता का ज्ञान सुनने के बाद होता है महाभारी महाभारत युद्ध, और तो महाभारी महाभारत युद्ध में भगवान भी होता है। ऐसे नहीं कि महाभारी महाभारत युद्ध हो और भगवान न हो। महाभारी महाभारत युद्ध करो पांडव यादव आपस में ही मिलकर के पूरा कर लेंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे, ये हो नहीं सकता। महाभारत महाभारत युद्ध होगा तो भगवान जरूर होगा, कहां होगा ये विचार को पता है। तो वो काल का उनको कैसे देना है कि भारत में भगवान आते, ये विनाश का पीरियड है, बाबा ने वाणी में डिक्लेयर किया हुआ है। मुर्गियों ने ऐसे महावाक्य है कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश होगा, महावारी महाभारत युद्ध से स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो स्वर्ग के गेट खोलने वाला कौन? स्वर्ग के गेट का उद्घाटन करने वाला कौन? शांति धाम सुख धाम मैं सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा? सिर्फ ज्योति जन्म की तो बात ही नहीं, तो सुखधाम में तो ले भी नहीं जाता। जरूर जरूर वो जिसमें प्रवेश करता है और जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना का कार्य संपन्न करता है, उसके द्वारा उद्घाटन भी होता है, सुखधाम का भी तो शांति धाम का भी, तो उसका देश भी होना चाहिए। इस सृष्टि पर ही उसका देश होना चाहिए, जिस देश में वो पाप पाप के रूप में प्रकट होता है। तो वो देश है मगध देश, वो मगध देश कोई हिंदू हैदराबाद में नहीं, मगध देश माने बाबा ने बताया मगरमच्छों का देश। आज भारत के अंदर भी मगध देश मगरमच्छों का देश, क्रोकोडाइल्स देश, मगरमच्छ के देश, छोटी छोटी सब मछलियों मछलियों को जल के जीव जंतुओं को खा जाता है, ऐसों का देश। बकरियां हो चाहे वो कछुआ हो चाहे घड़ियाल हो हाथी घोड़ा, तो ये है मगरमच्छों का देश जहां मगध देश में भगवान आते हैं। वो कोई सीधा हैदराबाद नहीं है, वो है गंगा यमुना का द्वारका, जहां भगवान आते हैं, जहां भगवान के आने की यादगार बनी हुई है। कहां जन्म लेते हैं? कहते हैं अयोध्या में जन्म लेते हैं। तो जहां प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते होंगे वहां उसकी यादगार भी तो होनी चाहिए, अयोध्या। दूसरी वो तो राम की हो गई, फिर कृष्ण की मथुरा, ये दोनों कहां है? यूपी। और ये ऐसे मगरमच्छों का देश है जो सारे भारत में विख्यात भी है, उसने भी खास खास मुरादाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, बरेली और ये जो जिले हैं आसपास के, ये तो ऐसे जिले हैं जो सारे हिंदुस्तान में भयंकरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस मगरमच्छ के ऊपर गंगा की सवारी दिखाते हैं। गंगा पतित पावनी नदी भी सबसे जास्ती कौन से देश में बहती है? यूपी में। तो नाम रूप देश और काल, उसके आने का टाइम क्या है, उसके प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने का समय क्या है, उनसे पूछो कि तुम जानते हो? ऊंचे तो उनके बाप का आज तो मशहूर होता है ना, है? ऐसे थोड़े कि बाप आए और उसका पाठ मशहूर ना हो, ऊंचा पाठ बजाएगा तब तो दुनिया में उसका गायन होगा, पूजन होगा। पाठ कुछ बजाए नहीं, कुछ करके जाए नहीं, है? दक्षिण भारत में कोई भी यूपी का आदमी पहुंचता है तो उसको जल्दी पनाह नहीं मिलती। दक्षिण भारत के लोग इधर उत्तरी हिंदुस्तान में पहाड़ों पर रहने वाले लोग ये इतने खतरनाक नहीं है, बहुत सीधे साधे थे, लेकिन यूपी के लोग जहां जहां पहुंचे वहां वहां लड़ाई झगड़े फसाद मचाते रहे। ये बहुत फसादी देश है। या ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने 35-35 के परिवार को एक सेकंड में गोली से भून लिया। जो सबसे श्रेष्ठ थे वही सबसे बेस्ट बन जाते। तो अभी तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचे बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना, वो बात ही हमको डायरेक्शन दे रही, जो मशहूर होता है। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, जाकर राजधानी हिंदू रही है। चैतन्य राजधानी भी होती है तो हिंदू राजधानी भी है। पहले कौन सी स्थिर होगी? चैतन्य राजधानी पहले संयम हो। तो बाप कहते हैं कि तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, पहले भी की थी और अब फिर से कर रहे हो। ये शूटिंग काल में भी ये स्थापन करने का और धर्मियों के द्वारा हिलाने का काम होता रहता है। तो तुम फिर फिर ये राजधानी स्थापन कर रहे हो, आखिरी 2500 वर्ष के लिए राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। क्या दिल्ली पर सबकी नजर है? अगर तुम्हारे ने क्या बोला? दिल्ली पर सबकी नजर है। सबकी मान है रामी बच्चों की। बाबा ने कहा दिल्ली पर सबकी नजर है, बाप की भी नजर। इसका मतलब जो दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं, हर धर्म के व्यक्ति ने दिल्ली के ऊपर अपने अपने टाइम पर, या तो आखिरी टाइम पर, आखिरी टाइम पर ही समझो, کیا کروڑ کلی ہوں دلی میں راج کیا ہے. کوئی نے دلی کو سنوارا ہے اور کوئی نے دلی کو بگاڑا. تو باپ کہتے ہیں کہ باپ کی بھی نظر دلی پر ہے اور سب کی نظر دلی پر ہے. تو سب کی کیا مانا, باپ کے جو بچے ہیں ان کی نظر دلی پر ہے. وہ باپ کے بچے ہو سکتے ہیں پھر, اور نظر بھی ہوگی تو بلیک نظر ہوگی یا وائٹ نظر ہوگی. سمجھ لو اپنے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لو. جن بچوں کی وائٹ نظر ہے 100% سب سمجھ لو کہ ہم دیوتائی کو لکھتے ہیں, اور 1% بھی اگر بلیک نظر ہے کالی نظر ہے کا مطلب چیتن دلی ہے نا. تو چیتن دلی جب ہوگی تو ڈراما کی دنیا نہیں ہوگی. وہ نئی دلی ہو پرانی دلی ہو, نئی دلی کی بات ہے. نئی دلی بابا آ کر کے ساتن کرتے ہیں. نئی دلی کے جو فالوئرس ہیں کس چنچ نے ساتن کی 10 سال میں کیا بنا ہوا نہیں تھا. بابا نے مرلی میں بولا ہے دلی کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا, 10 سال کا ٹائم لگا. تو کیوں کہا اس کے آلوک کی دنیا کا کیا کنیکشن. ضرور کنیکشن ہے کہ وہ چیتن دلی بھی بنانے میں باپ کو 10 سال کا ٹائم چاہیے. وہ 10 سال میں کون سے 10 سال, 83 میں اب تک باپ دادا نے بولا کہ سن 83 چل رہا ہے تو 83 میں 13 ہونا چاہیے نا. ارے سن 83 سے لے کر کے 83 تک یہ دن چلتا رہا اور 83 تک باپ کا کوئی ہوا ہی نہیں, کوئی نہیں ہوا. اتنے سرینڈر ہوئے برہما کمار اور برہما کماری نامداری اور باپ کا ایک بھی نہیں بنا. نہیں کون کہہ رہا ہے دے. ہاں اگر بنا ہوتا تو اگست باپ دادا کیوں بولتے کہ 83 میں 13 ہونا چاہیے نا. یعنی پریکٹیکل میں جو پارٹ بجانے والا باپ ہے اس باپ کا پریکٹیکل میں آچرن کرنے والا 13 بننے والا کوئی بچہ مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا تب تک سن 83 تک. تو باپ ماتا گرو کو آگے کرتے, پہلے آگے کس کو کرتے ہیں ماتا گرو کو. تو ماتا کو آگے کیا 84 میں 84 گھنٹے والی دیوی کے لیے اگست والے میں کیا بول دیا. 84 سن چل رہا ہے تو 84 گھنٹے والی دیوی بھی ہونی چاہیے. کتنے گھنٹے والی 84 گھنٹے والے, باقی 24 گھنٹے کہاں گئے. باقی 24 گھنٹے کہاں رکھ دیے. ہاں 24 گھنٹے ہیں وہ بجنے والے گھنٹے نہیں ہیں. کیا شنکر پاروتی کے مندر میں جب جاتے ہیں یا شیو کے مندر میں جاتے ہیں یا کوئی بھی مندر میں جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گھنٹا بجاتے ہیں. اے دیوی دیوتاؤ اجان کی نیند میں تم سوئے ہوئے ہو اب چل جا, ہم آئے رہے ہیں. تم آئے رہے تو لڈو کھاؤ گے کیا. سبق لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھنٹے بجاتے ہیں. سب تم کو پتا ہی نہیں ہے کہ بھگوان تو تمہیں بھی پاون بننے والا ہے, تم کیا اس کو جگاؤ گے. تمہارے جگانے کا کام ہے, تم شنکر پاروتی کو جگاؤ گے تو تم سمجھتے ہو کہ اجان نیند میں سوئے ہوئے ہیں. جیسے ہم اجانی ہیں ویسے یہ بھی اجانی ہوں گے. جیسے ہم کرم اندریوں سے اجانتا کے کرم کرتے ہیں ویسے یہ بھی کرتے ہوں گے. کیونکہ یادگار جگن ناتھ مندر میں, کوارک مندر میں, سوریہ مندر میں بنی ہوئی ہے لیکن ان کی آنکھیں پھوٹی ہیں. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان مندروں میں جو دیوتاؤں کے گندے چتر بنے ہوئے ہیں وہ چتر صرف باہر سے دیکھنے کے لیے ہی گندے ہیں. وہ صرف کیچڑ میں کمل دکھایا گیا ہے. وہ بدھی سے کہتے ہیں بدھی سے وہ پرام ہے उपराम में तेज दिखाई गई है। प्योरिटी की पूजा होती है। अगर वो अनचर हैं तो उन असली चित्रों को बंद क्यों नहीं कर सकती सरकार? क्यों नहीं इतनी ताकत है? ताकत नहीं हो सकती क्योंकि असलियत जो है वो सर पर चल के बोलती है। तो 84 घंटे वाली देवी है ना, जो 84 घंटे हैं सात ग्रह में ब्रह्मा वत्स रावण के प्रतिरूप हैं, सात बात वाले रामायण नारायण और उनके सारे फॉलोअर और उनसे कनेक्टेड धर्म पिताएं जिनमें वो कन्वर्ट होते हैं और उनके सारे फॉलोअर, वो सब हो गए रावण संप्रदाय। ये रावण संप्रदाय को सुधारने के लिए बाप माता गुरु को ही आगे कर देता है। इसलिए वाणी में बोला है शंकर कोई जितना थोड़े करता है, बिना कौन करता है? शक्तियां संहार कारण गायी हुई है। तो जो शक्तियां संहार कारण गायी हुई है उन्हीं में से एक शक्ति दिखाई गई है जो उन दुष्टों के दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा गाई जाती है। लेकिन बाप का पार्ट बंदर कुल है तो अम्मा का पार्ट कोई, इसलिए एक वाणी में बोला है कि रचैसा बाप को तो फिर भी पहचाना जा सकता है लेकिन रचना को पहचानना मुश्किल। विधि हूं नारे हृदय गति जानी, क्या भक्ति मार्ग में कह दिया? विधि हूं ब्रह्मा जी ने भी स्त्री के हृदय की गति को नहीं पहचान, ये तो नहीं था कि परमात्मा ने नहीं पहचान पाया। तो बाप का नाम रूप देश काल चारों बातों की बात है, वो पाठ मशहूर होता है तो उनको बताओ कि अभी तुम जानते हो वो बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे। कौन सा बाप? जो शक्ति पा करके पुरानी दुनिया का विनाश, पुराने धर्मों का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं, साफ करके नहीं चले जाते दुनिया की सिर्फ जहां कहां मरम्मत करके नहीं चले जाते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना ये और किसी का कार्य नहीं हो सकता। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम मेरे बच्चे मददगार, तुम ही पवित्र बनते हो। क्या तुम मेरे बच्चे जो मददगार हो वो पवित्र बनते हो? तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूरी स्थापन होनी है, पवित्र राजधानी जरूरी स्थापन होनी है। राजधानी को इन विदेशी गृहणियों ने आकर के क्या कर दिया है? अब पवित्र कर दिया। तुम पवित्र राजधानी स्थापन करते हो, वो कब्रस्थान बनाते हैं और तुम सही स्थान बनाते हो, सहीयों का स्थान सही मन। इससे ज्ञान और योग के पंख लगे हुए हैं, ज्ञान योग के पंख कभी निकल ही नहीं सकते। ज्ञान कहा जाता है बाप की पहचान, ब्रह्मा बाप की पहचान की ब्रह्मा बाप का आकार बदल जाएगा। ये अगर पहचान है तो दिल्ली कई स्थान बनने की ओर जा रही है, और अगर पहचान ही नहीं तो जरूर दिल्ली के ऊपर विधर्मियों का विदेशियों का प्रभाव है। जैसा राजा जैसा शासक होगा वैसी प्रजा बनेगी, क्योंकि शासन तो दिल्ली के ऊपर हो रहा है ना। तो तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। क्या इस्लाम वंशी बौद्ध वंशी क्रिश्चियन वंशी मुस्लिम वंशी राज्य नहीं होगा, फिर राम राज्य होगा बाद, क्योंकि राम तो ऐसा ही बना हुआ है राम राज्य, फिर रावण। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लग रहा है। हिंद में किसी तारीख भी लिखी हुई है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, राजयोग है ना याद, याद किसकी की जाती है? अरे जिसने कोई काम किया हो हमारे कल्याण का उसको याद कर किया जाता है। कुछ किया ही न हो, कुछ दिया ही न हो तो उसको याद कौन करेगा? तो याद वही है सहज राजयोग, और वो याद सहज सहज आनी चाहिए। ऐसे नहीं हाथ पांव बांध करके घंटे दो घंटे बैठना पड़े तब याद आए। वो तो है सन्यासियों की हठ योगियों की याद, वो हठ योगियों की याद हठ योगियों ने सिखाई है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक पुरी के ब्राह्मण नहीं है, कहीं तो ब्राह्मणों की भी नौ पुरियां होती। तो नौ धर्म है जो बाप से बादशाही प्राप्त करते हैं, तो उनसे कनेक्टेड जो कन्वर्टेड ब्राह्मण है कच्चे पक्के होंगे, नवपुत्र भी बनाए दिए। पांडिलु गोत्र दूसरे तेज का मध्यांत, याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से इससे कष्ट मिलता है। याद से पाप कर्म रत्न होते हैं और पढ़ाई जितनी पढ़ेंगे उससे क्या होगा? पद मिलेगा। पढ़ाई सिर्फ छोरी की नहीं, छोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ाई होती है। तो छोरी और प्रैक्टिकल दोनों में जो पढ़ाई पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा उनको उनसे तो उनका पद भी मिलेगा। पढ़ाई में कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे? ज्ञान योग धारणा करिए। ऐसे नहीं कि धारणा की बात को निकाल दिया जाए, उसमें सबसे पहले आती है ज्ञान की बात। ज्ञान पूरा होगा ज्ञान मान पहचान समझ। अगर बात की समझ ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, तो पढ़ाई क्या होगी? फिर तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। अरे पढ़ाई जो है वो दो तरह की है, एक तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ ली और जेब में रख ली, तो ऐसों को धन तो मिलेगा लेकिन स्टेटस नहीं मिलेगा। पढ़ाई पढ़े और साथ साथ दूसरों को भी बांटे, और बांटने के भी तरीके हैं, कोई साथ पूर्वक बांटते हैं और कोई निस्वार्थ होकर के बांटते हैं। तो जो निस्वार्थ सेवा है वो अवस्था को चढ़ाने वाली सेवा होती है। जब अवस्था करेगी तो स्टेटस भी माला का माता भी ऊपर करेगा। अगर ऐसी सर्विस सर्विस तो बहुत थी, लेकिन सारी सर्विस ऐसी थी कि वो अपने भगत बन गए, बनाने से भगवान के भगत, उनसे सेवा लेनी थी भगवान की सेवा और ले ली खुद की सेवा, तो स्टेटस मिल जाएगा क्या? अब भगवान तो सबको जो जानता है। हाँ जी, तो स्टेटस मिलता है पढ़ाई से, जरूरी गुण धारण करने हैं, हाँ इतना जरूर है, माया के तूफान जरूर आएंगे। पढ़ाई करने वालों को जितना ज्ञानी होगा उतना ज्ञानी के पीछे माया भी दौड़ेगी, पीछे पड़ेगी। अगर उठकर बाबा से बातें करना पड़ा अच्छा, उसके लिए फिर क्या करना पड़े? हैं? जो बेहद का अमृत बोला है उस बेहद के अमृत बोले में उठ करके बाबा से क्या करो? बातें करो। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए टाइम अच्छा है, क्योंकि यहाँ पाप के भक्त भी बन रहे हैं। क्या कौन से पाप के भक्त बन रहे हैं? भक्ति तो साकार की होती है, जिंदगी की साकार की भक्ति होगी कि निराकार की होगी? जिंदगी को तो याद किया जा सकता है, भक्ति कितनी होती है? साकार बोलने की चाहे वो चैतन्य हो चाहे गर्म बाप, भक्ति मार्ग में गर्म मूर्तियों की पूजा करेंगे भक्त लोग, और यहाँ यहाँ चैतन्य मूर्तियों की बात। तो यह जो बात बताई कि निजी बीती बातें करनी चाहिए, किससे? बात से करनी चाहिए। क्या बात से करनी चाहिए? मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं उन बातों में कड़वाहट पैदा हो जाए, तेरी मेरी पैदा हो जाए। तुमने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों किया। तो अवस्था चढ़ने वाली नहीं है। अभी हम सिर्फ पदाचारी दुनिया में जाएंगे, बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में क्या रहता है कि हम शरीर छोड़ करके कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम में जाएंगे, क्योंकि माता जी बूढ़ी है तो कहती है हमें तो शरीर छोड़ के जाना है। इस शरीर से तो आप हमें संचल काया बने नहीं है, सीधे मुक्ति धाम चले जाएंगे। क्यों माता जी? फिर शरीर छोड़ के दूसरे जन्म लेंगे, दूसरे जन्म लेंगे नहीं, यानी संचल काया शरीर तो नहीं बनानी। बाबा को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है। जब मालूम ही नहीं है तो पुरुषार्थ भी, पुरुषार्थ भी कैसे होगा बताओ? नवीन भाई ने इतने सभी पर रहने वाली माँ का भी ये बात नहीं बताई है कि बाबा कहते हैं मैं ऐसा धोबी हूँ जो तुम्हारे शरीर उसी वस्त्र को भी धोता हूँ। तो ऐसे धोबी किस काम का जो कपड़ा ही फाड़ डाले और कहीं अगले जन्म में ले लेना नया कपड़ा है। क्यों माता जी? कौन सा धोबी बनाया है? पंच में काया करने वाला धोबी मिला है ना, चलो उस जन्म में ना अगले जन्म में से है? अगर भक्ति के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन शरीर छोड़ करके भी हम ज्ञान में आएंगे, क्योंकि ज्ञान का बिना से नहीं होता। हम श्रेष्ठ कुल में जन्म लेंगे, ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगे है, जन्म को भी कारण क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर श्रेष्ठ कुल में जन्म लेंगे अलौकिक। और जन्म लेकर के फिर क्या होगा? हमारा पिछले जन्म का पुरुषार्थ फिर भेद हो जाएगा और जिन जूनी रात तो अपने अंत मते तो गति हम हो पाएंगे, कि जिसके लिए बाबा ने कहा क्या लास्ट तो सांस में जाए। तो नया जन्म लेकर के हम क्या करेंगे? फिर अपनी कंचन काया बनाएंगे और इसी पुराने शरीर को पुरुषार्थ करके क्या बनाएंगे? नया शरीर बनाएंगे। तो जब बनाने वाले होंगे तो जरूर उनकी समझ में ये बात आएगी। भरकृष्ण जैसी आत्मा है, राधा जैसी आत्मा है, जो सतयुग में ही जाकर के जन्म लेंगी, तो उनके समझ में ये बात नहीं आएगी कि इसी जन्म में सोलह कैसा बनेगा नया बन। ये इब्राहिम इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण होंगे, बौद्ध साहित्य वगैरह के धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, तो उनकी भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी। राधा कृष्ण वाली आत्मा है, माने ब्रह्मा और सरस्वती की आत्मा, उनका ऑलराउंड पार्ट है। अभी पार्ट चल रहा है उनका अपने शरीर से। कौन से राधा कृष्ण का? संगम भी राधा कृष्ण का या सती भी राधा कृष्ण का? कौन से राधा कृष्ण का ऑलराउंड पार्ट है? संगम भी राधा कृष्ण का ऑलराउंड पार्ट है, लेकिन सत्य में आने वाले राधा कृष्ण का ऑलराउंड पार्ट है। उनके तो 50 वर्ष कम हो जाएंगे ना। अरे अरे 69 से लेकर के और 18 तक कितने वर्ष हुए? 69 से लेकर के 18 तक 2018 तक कितने वर्ष हुए? वो ये 49 माना 50 है अबाउट तो बताया जाता है, आखिर देखो बताया ही नहीं जाता। तो 50 वर्ष दादा लेखराज वाली आत्मा के कम हो जाएंगे ना पैट बन जाने में, जो उनका अपना शरीर होगा उन 50 वर्ष में उनका अपना शरीर तो नहीं होगा। हाँ शरीर मिलता है, लेकिन जो शरीर मिलता है वो भी लोन का शरीर, वो भाई किसी ने हमको कुछ दान दे दिया, तो जो दान दी हुई चीज वो हमको वापस तो अगले जन्म में, जन्म में नहीं गई अगले जन्म में या किसी जन्म में, हिसाब किताब तो बनता है ना। हाँ ये तो शूटिंग की बात बताई थी 2000 वर्ष के बाद की बात बताई, शूटिंग तो चार लोगों की शूटिंग कब तक है? 2000 तक है या 2000 के बाद भी चार लोगों की शूटिंग चल रही है? कहाँ की बात कहा ले जाकर डाल दी है, बुद्धि तो चलानी है लेकिन फिर हिसाब से बुद्धि चलाइए कनेक्शन जोड़ करके, क्योंकि राम की सेना गई हुई है। हाँ जो भी हाँ दिन है सवा सौ वर्ष और अंत में उतनी थोड़ी रहेगी, अब ये प्रसंगांतर अगर करेंगे तो फिर लंबा राग हो जाएगा। 12 जन्म है तो 12 जन्मों में फिर कम से कम होती जाएगी या बढ़ेगी? कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होगी ना। हाँ जब कम होती जाएगी तो वो तो एवरेज बताया जाता है, एवरेज का मतलब ऐसी रेट नहीं है, शुरुआत में ज्यादा भी हो सकती है और अंत में सवाल सवाल से कम भी हो सकती है। ऐसे ही सचिव के राज में देश वक्त एवरेज बताई तो सचिव के राज में ज्यादा भी हो सकती है और सचिव के अंत में देश होता है तब भी हो सकती है। तो बाबा को ये टाइम बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बात करने का, कौन सा अमृत वेला, इस अमृत वेले में बाप को बच्चों से ही बात करते हैं, बाहर वाली दुनिया से बात नहीं करते, यानी दूसरे धर्म वाली जो आत्माएं हैं उनसे बात नहीं करते। तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में दूसरे धर्म के हैं कि अपने धर्म के? एक तो आप ही तो रुद्रमाला के मड़के हैं, जो बीज हैं उसने दूसरे धर्म के हैं कि अपने धर्म के हैं? दूसरे धर्म के भी है अपने धर्म के भी बीज, जो बीज को सारी दुनिया के होंगे सभी धर्मों के बीज हैं, लेकिन बीज का कभी विनाश नहीं होगा, उन बीजों पर सिर्फ दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका पड़ता है, वो छिलका उतर जाता है फिर वो ओरिजिनल 84 जन्म लेने वाले देवता बन जाते, तो उनमें जो 84 घंटे हैं वो 84 घंटे भी भले दूसरे धर्म के बीज हैं लेकिन वो बीज भी पूरे 84 जन्म लेने वाले देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनमें सिर्फ अहंकार रह जाता है कि मैं अमुक धर्म का बीज हूं, और ये जब तक अहंकार रहेगा तो अपने कुल की पोषण करती रहेगी, तो उनका ये अहंकार भी यही खत्म खत्म होना, राजधानी स्थापन होने से पहले ये उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा, पक्का उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि अरे हम तो ये लबादा पहना हुआ है इसको हटाओ, हम तो दूसरे धर्म के हैं नहीं, हम तो ये ओरिजिनल देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। तो बूढ़ों के दिल में तो ये रहता है ना कि हम शरीर छोड़ धर्म नहीं जाएंगे, ऐसे की बात ही तो समझानी है कि सर्प का मिसाल किसका है, हम ब्राह्मण का है ना, तो सर्प जिंदा रहता है जब खाल छोड़ता है कि मर जाता है, तो हम क्यों मर जाए भाई? हाँ तो मर जाए तो कोई जरूरी है, बारह में अब की भाषा नहीं मर जाएगा, जीते जी मर जाओ, दो डायरियों के संबंध होते पुरानी दुनिया के जो संबंध दुखदाई है उन्हें छोड़ दो, कोई जरूरी है उनमें लिप्त रहना है, वही शरीर कौन सा शरीर छोड़ना है, पुराना शरीर छोड़ने की बात है कि जो हनुमान रूपी शरीर छोड़ना है, बारह में जीते जी मरना हमको दिखाया है, यह शरीर से मरना ब्रह्मावारी का दिखाया है, हम सारे हाथ फोल होकर के और कैंसर होकर के मर जाएंगे तो नई दुनिया का फाउंडेशन कैसे लगेगा? राजा कुछ जैसे बच्चों को जन्म देने वाले क्या विदाई होंगे, भोगी होंगे, भोगियों से तो भोगी दुनिया तैयार होगी, और योगियों से योगी योगी देवताओं की दुनिया तैयार होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि विदाई हो और विकारियों के बच्चे राजा कुछ बन गए, वो तो मुरली ने बोला है लेकिन उसको समझा नहीं है ब्राह्मणों ने, क्या बोला कि राधा कृष्ण के माँ बाप विदाई होंगे, अरे कौन से राधा कृष्ण के माँ बाप की बात की है, तो संगम भी राधा कृष्ण के माता पिता है, जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड आत्माएं हैं जो उनको प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते, جب تک سروس میں آگے قدم نہ بڑھائیں اور ساری ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں, کیا راجا بلی کا پارٹ نہ بجائیں, بھگوان کو سب کچھ اپنا ارپن نہ کریں, تو کبھی بھی بھگوان پرتکشتا روپی جنگ نہیں لے سکتا. اس لیے جتنے بھی ودھرمی ہیں ان ودھرمیوں کے بیچ میں سب سے جاستی پراپتی کرنے والا کون سا دھرم دکھائی دیتا ہے؟ کوئی کا دھرم نہیں. اسلام دھرم نے جتنی لاجائی اس پرتھوی پر ہوگی اتنی بودھیوں نے, کرسچنس نے, مسلموں نے, سکھوں نے نہیں ہو سکی. ارے یہ انگریز تو ابھی 200 سال سے دنیا کے اوپر چھائے ہیں, اس سے پہلے ساری دنیا پر کون چھائے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے یہ پراپتی کہاں کی تھی؟ یہاں جو بیگڑوں کا سمے ہے اسلام دھرم کی, جو منت بنتے ہیں پاپ کو پرتیک کرنے کے, ان میں ضرور پیاز بھی اتنا جاتی ہوگا, بھارت کے پتہ پیاز بھی اتنا جاتی ہوگا. نہیں مانتے ہو تو چاروں کے چتر میں ابراہیم کو دیکھ لو, دوسرے دھرم کے چاہے سامنے کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہم ہیں, ہمارے سے بڑا کوئی دھرم کھنڈ ہمارا ہمارے سے بڑا کوئی دیش ہے نہیں, ہمارا ہی دھرم کھنڈ سب سے اونچا. اور اسلام دھرم کا جو ابراہیم ہے وہ بھارت کی اور مکھ کیے ہوئے بیٹھا, تو انتر ہوا نا, تو بھارت کو پرتیک کرتا ہے. تو بوڑھوں کے دل میں یہ تو رہتا ہے نا کہ ہم شریر چھوڑ گرم میں جائیں گے. ابھی بات کی کہ نئے نئے کو نہیں سنانا ہے, یہ بات کون سی بات, سنیاسیوں کی بات, دھرم پتاؤں کی بات, یا گروؤں کی بات, ان کی جانی ان کے سامنے نہیں بتانی, جس کے سامنے بتانی ہے یہ باتیں گہری باتیں, جو پرانے ہیں جن کی بدھی بھی یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ پرماتما کے مقابلے تو اور کوئی بھی شکتی کو بنانے والا, راجدھانی استھاپن کرنے والا اور راجدھانی دلی راجدھانی کو اونچا اٹھانے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو کن کو سنانی ہے؟ بوڑھوں کو سنانی ہے, یہ جو جانے میں بچے ہیں ان کو سنانی ہے, بوڑھوں کو سنانی, یعنی جو جانے میں پرانے پرانے ہیں جن کی بدھی میں تو بات کا مہتو بیٹھ چکا ہے کہ باپ کیا ہے اور اس کے مقابلے دوسرے دھرم کے تحت کیا ہے, کہاں باپ باپوں کا باپ ہو, پتیوں کا پتی کہا جاتا ہے, گروؤں کا گرو کہا جاتا ہے, اور کہاں وہ گرو, کہاں ست گرو ایک, تو باقی تو گرو کیسے ہو گئے, ایک تو ہو گئے لیکن وہ ست گرو, تو باقی کیسے ہو گئے, باقی تو سب ہو گئے جھوٹے کرنے سے گرو. جن کی بدھی میں یہ گہرائی بیٹھ گئی ان بوڑھوں کو, یعنی انوبھوی بچوں کو ان باتوں کا لین دین کرنا ہے, ان باتوں کا گرو کی پول پٹی کھولنے کا, جو نئے نئے بچے ہیں ان کے سامنے ان کے گروؤں کی برائی نہیں کرنی چاہیے. تو گروؤں کے دل میں یہ تو رہتا ہے نا کہ ہم شریر چھوڑ گرو میں جائیں گے, کون سا شریر چھوڑ, جو جان میں سمجھدار ہیں بوڑھے ہیں انوبھوی ہیں ان کو کون سا شریر چھوڑنا ہے, جو ابھیمان روپی شریر چھوڑنا ہے, اور جیتے جی جو باپ نے ہم کو سکھایا جیتے جی مرنا ہے. تو ایسے بوڑھوں کے دل میں جو یہ لکھ بیٹھا ہوا ہے ان کی بدھی میں ہے کہ ہم دیہ ابھیمان سے جب مریں گے تو جیسے کرشن ہے سنگمی بھی کرشن ہے جو گرو کا پہلے پارٹ بجاتا ہے, کیا گرو میں بھی پتنی کی من بدھی روپی آتما میں وہی سنکلپ چلتے ہیں جو اس کو پرتکش ہو کر کے چلانے, دھرم میں بھی پارٹ بجاتا ہے سنکلپوں کے آدھار پر, اور پھر جب پرتکش ہوتا ہے تو پرتکش روپ میں بھی وہ پارٹ بجاتا ہے. تو جیسے کرشن کو دکھایا ہے کیا پیپل کے پتے پر کرشن انگوٹھا چوس رہا ہے, اور تیری سے بہت سے دکھایا کرشن کو دکھاتے ہیں, کیا دکھاتے ہیں شاستروں میں دکھاتے ہیں پیپل کے پتے پر بیٹھا انگوٹھا چوس رہا ہے, تو پیپل کے پتے کی تو بات ہی نہیں, پیپل کے پتے کی نویا دے دے پڑی, پیپل کا پتا مانا بہت ہلنے ڈلنے والا, مایا کے تھکیڑے کھانے والا, ضرور مایا بھی پرش ہیں, مایا بھی آتما ہے جو اس کو ہلانے ڈلانے کے وائبریشن چھوڑتے ہیں, جس کی مٹی پھیلاتے ہیں और वो पत्ता पीपल का हिलता है, तुम्हारा भी तूफान आते हैं लेकिन उस पत्ते पर विराजमान कौन है, उसका आधार किसने लिया? कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा ने आधार लिया हुआ, इसलिए वो नवैया डोलेगी तो विधर्मियों के आक्रमण से लेकिन डूब नहीं सकती। नैया डोलेगी, नैया मन शरीर रूपी नैया, जो शरीर रूपी नैया जो खड़ा, अरे इस विषय वैधानी नदी से पार जाना है ना, तो पार जाने के लिए क्या चाहिए? नैया चाहिए ना, कि सन्यासी बने के पार कर लोग, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होनी है तो काक भी तो प्रवृत्ति मार्ग में रहकर के राज्य को सिखाएगा ना, कि निवृत्ति मार्ग के राज्य को सिखाएगा। वाणी में तो बार बार बोला हुआ है कि निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राज्य को सिखाई नहीं सकते, तो ब्रह्मा के द्वारा क्या राज्य को सिखाया? ब्रह्मा तो कुछ भी निवृत्ति में थे, उनके हैं मम्मा थी उनके साथ, मम्मा उनकी बेटी थी या पत्नी थी? तो बेटी थी, पत्नी थोड़े थी, तो नवैया का आधार लेना पड़े। जैसे वैतरणी नदी से पार होने की, कौन से कृष्ण को, काले कृष्ण को कि भोले कृष्ण को? काले कृष्ण कलमा था बेचारा, अरे घोड़ा कृष्ण पीपल के पत्ते पर होगा क्या? नहीं, माँ तो नवैया डोलेगी नहीं, पता हाँ बजलुक के अंत की शूटिंग में कहा जा सकता है। अच्छा तो बूढ़े के दिल में भी ये रहता है कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे, यानी जीते जी एक शरीर रूपी भानु को छोड़ेंगे और ज्ञान गर्भ में जाएंगे। जैसे कृष्ण जिस समय ज्ञान गर्भ में पल रहा है और पल करके फिर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, आस पास के ब्राह्मण परिवार भी जानते हैं कि ये कृष्ण की सोल कार्य कर रही है, यानी ब्रह्मा की सोल इस ब्राह्मण बच्चे के रूप में कार्य कर रही है, तो ये हुई प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो क्या सिर्फ एक कृष्ण देवता कोई प्रत्यक्ष होना है क्या? दूसरे सखा प्रत्यक्ष नहीं होंगे क्या? सुदामा और नंदुदा बेचारे कहा गए, उनको भी तो प्रत्यक्ष होना है। तो बाबा कितना नशा लगाते हैं बूढ़ों को, क्या जो ज्ञान में अनुभवी है बूढ़े हैं उन बूढ़ों को बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, बहुत नशा चढ़ाते हैं। ऐसी बात बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए, किसका बूढ़ होगा, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं, कौन शिव बाबा? तो समझ लो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा नहीं, क्यों ब्रह्मा बाबा भी गुरुओं की लिस्ट में है क्या? जैसे और धर्म पिताएं गुरुओं की लिस्ट में है वैसे ब्रह्मा बाबा भी, कौन से ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा तो अभी भी काम कर रहे हैं अगर भुजाओं के रूप में, अब ब्रह्मवाणी ने बोला जैसे तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो वैसे बाप ने भी स्थान परिवर्तन किया है, बोला ना भी तुम्हारी ने तो स्थान परिवर्तन किया है तो जरूर कोई स्थान होगा। यहाँ 76 में बाप दादा राम और कृष्ण की सोल ने ट्रांसफर होकर के नई राजधानी जमाने का फाउंडेशन एडवांस नॉलेज का फाउंडेशन डाला होगा, ये फाउंडेशन कहाँ पढ़ना चाहिए? दिल्ली में पढ़ना चाहिए। तो जो बूढ़े हैं उनको तो नशा करना चाहिए, बाबा के दस मीठी मीठी बातें करनी चाहिए कि शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाए रहे, पहले पहले हम आते सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया, उन बूढ़ों को क्या नशा होना चाहिए है? पहले पहले हम आते बेसिक नॉलेज में भी पहले पहले हम आते हैं, लेकिन क्या आदमी में भी कोई अकेले ब्रह्मा बाबा और दादा लेकर आ रही खास व्यक्ति नहीं थे, और बड़े बड़े परिवार के अच्छे अच्छे भाई लोग थे, जब यज्ञ के आदमी यज्ञ विध्वंस हुआ तो वो सब टूट गए। ऐसे ही एडवांस नॉलेज जो आज में हुआ सो अंत में होता, 76 में आज में वो बड़े बड़े पार्ट बजाने वाले सब धर्मों के बीच ब्रह्मा के बड़े से बड़े चार पुत्र मानसी पुत्र वो पहले रंगमंच पर प्रत्यक्ष होते हैं एडवांस ना लेंगे आगे क्यों नहीं छोड़ेंगे। जब मानसी ब्रह्मा के साथ उनका पार्ट है मानसी शक्ति रचने का तो क्या दैहिक शक्ति रचेंगे। ब्रह्मा दो गाय हुए एक मानसी ब्रह्मा मानसी शक्ति रची ब्रह्मा द्वारा तो मानसी शक्ति कब से रची गई लेकिन क्या दिन है लेकिन वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं हुई। जरूर शांति शिक्ष से कहा जाए जब पाप का प्रत्यक्षता वर्ष है मनाया गया तो पाप पाप के रूप में डायरेक्ट शक्ति पर प्रत्यक्ष होता है तो पाप के साथ जो पाप के खास बच्चे हैं कौन कौन मुख्य धर्म है चार तो उन चार धर्मों के चार भी प्रत्यक्ष होने चाहिए। तो इस्लामी बौद्धि क्रिश्चन ये भी बीज प्रत्यक्ष होते हैं तो वो हुए बूढ़े बूढ़े मन पूरी एडवांस नॉलेज के वही तो बूढ़ों को ये खुशी होनी चाहिए। सारी दुनिया को भूल जाओ तब हम पहले पहले नई दुनिया में आवेंगे क्या पहले पहले नई दुनिया में कब आवेंगे जब सारी दुनिया को भूल जाए। तो ज्ञान में अनुभवी बच्चों के लिए बाबा ने बोला कि तुम समझो कि पहले पहले हम आते हैं सारा आलम पार्ट हमने बजाया ये जो माला में आने वाले होंगे पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये बातें आएंगी जरूर और उनमें भी जो सबसे पुराने से पुराने हैं उनकी बुद्धि में जरूर पहले आएंगे। हमने अराउंड पार्ट बजाया अब बाबा कहते हैं कि किसी चोले को छोड़ दो क्या करो ये जो चिट्ठी चोला है वो अभिमान का कि मैं अमुक धर्म का हूँ मैं अमुक धर्म का हूँ एडवांस पार्टी में ऐसे ऐसे हैं तो समझे बैठे हैं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है तो कुछ जनसंख्या से बड़ा नहीं हो जाता परिवार तो सारी दुनिया बात की है क्योंकि जब बाप आते हैं सहमत के समय में तो सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम समझ करके आते हैं और यही बच्चों को समझाना है कि सारी दुनिया तुम्हारी अपनी तब आत्मा आत्मा भाई भाई का नारा सही होता है नहीं तो आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं कहे जा सकते। देह कहे तो सारी दुनिया को भूल लो ये है देह का संन्यास क्या ब्राह्मण को भी देह है या नहीं है देह तो है ब्राह्मण धर्म में भी देह तो होती है ना कि देह भान से परे हो जाते हैं देवता है देह भान से परे होते हैं ब्राह्मणों को तो देह जरूर क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की शक्ति रची गई ब्रह्म धर्म स्थापन हुआ शास्त्र वाली ब्रह्मा द्वारा 69 तक लेकिन देवता धर्म स्थापन नहीं हुआ कोई देवता ही कोई नहीं कह सकता कि हम देवता बन गए क्योंकि देवता मन नहीं निकाली तो देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ यह है देह का संन्यास वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा हम बच्चा बनते खुशी होती बचपन तो सबसे अच्छा है ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना पॉइंट निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी बुद्धि में पॉइंट ही नहीं निकलेंगे नहीं नहीं विचार सागर मंथन चलेगा ही नहीं तो खुशी भी हो नहीं सकती खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। पहले की प्रैक्टिस बाबा से बात करने की मनन चिंतन मंथन करने की ये प्रैक्टिस अगर नहीं हुई है तो आकारी स्टेज हर स्थायी स्टेज ही नहीं हुई हर स्थायी स्टेज नहीं बनी तो हर्ष की दुनिया वालों से अभी कनेक्शन ही नहीं टूटा। ये बात दूसरी है जो 5 करोड़ की दुनिया के जो संबंधी हैं साकार देह के साकार देह को जन्म देने वालों से उस लोहे की जंजीरों से कनेक्शन टूट गया तो सोने की जंजीरों में ब्राह्मणों की दुनिया में जो देहदारी ब्राह्मण है उनसे कनेक्शन जुट गए तो भी पूरी प्राप्ति नहीं हो सकती बात सोने की जंजीरें टूट जाए फिर बिजरू पात्रों की जो दुनिया है उसमें दही कनेक्शन अगर लग गया जो हीरो की माला तो उस हीरो की नॉलेज में भी अगर कनेक्शन है एक बात دوسرا نہ کوئی ایسی اسٹیج نہیں بنی ہے تو پرماتما باپ سے پورے گھر سے کی پراپتی نہیں ہو سکتی. تو بینک سے نکلیں گے تو تم کو خوشی ہوگی, جتنی پریکٹس بڑھتی جا رہی ہے فرسٹ تیاری کرنے کی, منم چنتن منتھن کی, اتنا کیا ہوگا تمہاری خوشی بڑھتی جائے گی, بہت مزہ آئے گا اور پھر گھومتے پھرتے یاد کرنا. ایسے نہیں کہ آکاری اسٹیج میں فرسٹ تاری اسٹیج میں ہی منم چنتن منتھن کی اسٹیج میں ہی تو کچھ سیکھنا ہے, باپ کو یاد بھی کرنا, ایسی یاد ہو تو باپ کی یاد میں لولین ہو جائے, کیونکہ لوک دنیا میں کوئی کسی کی یاد میں لولین ہو جاتا ہے, وہی وہی دکھائی کرتا ہے جو منموں کو شراب کی بوتل, منموں کو شراب کی بوتل باپ کو پرتیک کرنے کے ان میں ضرور تیاگ بھی اتنا جاتی ہوگا, بھارت کے بچے تیاگ بھی اتنا جاتی ہوگا. نہیں مانتے ہوتے بھارت کے چتر میں ابراہیم کو لوگ دوسرے دھرم کے پاس سامنے کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ابھی ہمیں ہمارے سے بڑا کوئی دھرم کھنڈ ہمارا ہمارے سے بڑا کوئی دیش ہے نہیں, ہمارا ہی دھرم کھنڈ سب سے اونچا ہے, اور اسلام دھرم کا جو ابراہیم ہے تو بھارت کی اور مکھ کیے ہوئے بیٹھا. تو انتر ہوا نا, تو بھارت کو پرتیکش کرتا ہے. تو گرو کے دل میں یہ تو رہتا ہے نا کہ ہم شریف چھوٹے گرب میں جائیں گے, ابھی بات کی کہ نئے نئے کو نہیں سنانا ہے یہ بات. کون سی بات, سنیاسیوں کی بات, دھرم پتاؤں کی بات یا گروؤں کی بات, ان کی گلانی ان کے سامنے نہیں بتانی, اس کے سامنے بتانی ہے یہ باتیں.